نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے ہم فتح مکہ کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے الحمدللہ ابھی تک ہم دیکھ چکے واقعات کی گہرائی میں جائے بغیر کہ کس حکمت عملی کا خوبصورت نمونہ تھی غزوہ فتح کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سٹرانگ لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے اور غلط چیز کو کبھی بھی برداشت نہ کرنا وعدہ خلافی کو آپ کا بالکل پسند نہ کرنا اور جب ایک کام کا ٹھان لیں تو اسے پیچھے نہ ہونا یعنی اس سے بھی بہت کچھ آگے بھی ہم اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن میرے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ فتح مکہ کبھی نہ ہوتی اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور صلح حدیبیہ کا ہونا بظاہر مسلمانوں کی اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست لگ رہی تھی کہ آپ نے جھک کر دب کر ون سائیڈڈ صلح کی اور وہ ساری شرائط ان کی مان لیں کہ جو اس وقت حضرت عمر جیسے صاحب ذکا شخص کو بھی سمجھ نہ آئیں لیکن یہ ایک لیڈر کی حکمت عملی ہوتی ہے اور اس کو وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھ رہا ہوتا تو لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے حکمت دی وہ ہمیں بھی عطا کر دیں جو معاملہ فہمی آپ کو عطا کی وہ ہمیں بھی عطا کر دیں اور جو حق کے لیے کھڑا ہونا اور پھر ڈٹ جانا یہ ہمیں بھی عطا کر دے اور باطل کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا اللہ ہمیں بھی عطا کر دے اور ہم ان خوبصورت گھڑیوں میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پرتاؤ ایک ایک رنگ گھول کے ہمارے اندر ڈال دیں کہ ہم بھی اس دنیا کے لیے اتنے ہی سعادت مند اور نفع بخش بن جائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوئے آج ہم کنٹینیو کریں گے آگے سے جہاں سب پیچھے پڑ چکے اور اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی خون بہائے فتح حاصل کی اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ کئی سال سے آپ کا اور اسلام کا راستہ روک رہے تھے کیا آپ وہ درگزر کا ان کے ساتھ معاملہ کیا اب آگے پیج کے بالکل آغاز سے سرزمین مکہ کی فتح سے بڑھ کر عظیم فتح یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفحہ کی بلندی پر بیٹھے تھے اور لوگ جوگ در جوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے اس کو ہائی لائٹ کریے گا ذرا سا اس میں اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اس ایک جملے میں آپ کے اور میرے لیے اب دیکھیں کہ بظاہر زمین کا ٹکڑا فتح ہو رہا نا لیکن وہ تو ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس جملے کو تین دفعہ اپنے دل کو دہرا کر کہیے کہ سر زمین مکہ کی فتح سے بڑی فتح لوگوں کا جوک در جوک اسلام میں آنا یہی بات ہمیشہ ہر جگہ آج بھی پیش نظر رکھنی چاہیے ہم سب کو دین کا کام کرتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زمین کے ٹکڑوں کا مل جانا فتح بڑی بڑی بلڈنگز کا بن جانا فتح لیکن میری نظر میں اصل فتح یہ ہے کہ لوگ وہاں جوک در جوک دین سیکھنے کے لیے آئیں خوشی تو ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین دی خوشی تو ہوتی ہے چھت مل گئی پرسکون ہوں گے اب اللہ ہمیں باقی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے ہر وقت کھتڑکا ختم ہو لیکن یاد رکھیے کہ سب سے بڑی جو ہماری خوشی ہے وہ کیا ہے کہ لوگ سیکھیں لوگ دین کی طرف آئیں تو اللہ کے نبی وہ فاتح نہیں دے کہ فتح کے بعد آپ جشن منائیں پارٹیز ہو رہی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دس اینڈ دیٹ بلکہ آپ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ اس وقت بھی دیکھیے کہ ایک مبلغ اور ایک استاد کی حیثیت میں بیٹھے ہیں اور لوگ آپ کو آ کے مل رہے ہیں ان سے توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ خصوصی طور پر بعض رائج الوقت خرابیوں سے اجتناب کا عہد بھی لیا جاتا اس پہ بھی رکیے ذرا دیکھیے اصل مجھے لگتا ہے استاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کتاب کو ریڈ کر رہا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک جملے کے اندر جھانکنا سکھائے جہاں مجھے پڑھنے سے ایک سیکنڈ بعد اندازہ ہوا کہ یہ جملہ بولنا لازمی ہے آپ کے لیے کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرے یا قرآن کی طرف آئے نیا بندہ تو سب سے پہلے توحید پھر رسالت کا اقرار کروائے اللہ کے نبی نے وہاں جا کر ان سے کوئی دوسری باتیں نہیں چھیڑی سب سے بڑا عہد جو میرا آپ کا اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ توحید کا ہے پھر رسالت کا ہے پھر جو وقت کی خرابی ہے اس کو بھی نوٹ کریں वक्त ख़राबियाँ क्या होती हैं? जो उस वक्त नोन होती हैं। हर दौर का एक फितना होता है ना, तो हर दौर में ख़ानदानी तौर पे, मुल्की तौर पे, कौमी तौर पे कुछ ना कुछ ख़राबियाँ आम हैं, तो फिर उनसे बचने का हद ये है इस्लाम। ये नहीं कहा बस कलमा पढ़ लो फिर जो मर्ज़ी करना, बस एक दफ़ा ला इला पढ़ो मैं बख्शवा लूँगा, और एक दफ़ा ला इला कह दो तो बस तुम समझो कि मेरी सिफारिश पक्की हो गई। ज़रा बैत के अज्ज़ा को देखिए और इसको पढ़ते वक्त सोचिए कि अगर बिलफर्ज़ आज मैं या आप मुसलमान हों तो ये सारी पाबंदियाँ मेरे और आपके लिए भी हैं, तो क्या आज के 2 बिलियन प्लस मुस्लिम इन बैत के अज्ज़ा के ऊपर फिट होते हैं? पहली चीज़, मैं अल्लाह के साथ किसी को भी इसकी ज़ात और इसकी सिफ़ात और इबादत और इस्तेआनत समझते हैं, बस इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्ताइन। क्या पता चला मैं अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करूँगा? ज़ात में शिरकत क्या होती है? अल्लाह जैसा कोई और, जैसे कि नसारा को गलती लगी कि नऊज़ बिल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ये ज़ात का शिरक है। इसकी सिफात का शिरक तो माशाल्लाह हम मुसलमानों और पाकिस्तानी और इंडियन लोगों में कसरत से पाया जाता है, और वो क्या है कि जो अल्लाह कर सकता है वो दूसरे भी करते हैं, अल्लाह जैसी सिफात दूसरों की बयान करते हैं, अल्लाह भी रिस्क देता है बुज़ुर्ग भी देते हैं, अल्लाह भी बेटे देता है दूसरे भी, और बाज़ लोग तो बड़ी जुरत से किसी को दाता भी कह देते हैं, नाउज़ु बिल्ला, किसी को दस्तगीर भी कह देते हैं, किसी को मुश्किल कुशा भी कह देते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी उम्मत का शिर्क दूर हो जाए और हमारे ज़रिए से दूर हो जाए, हम इस चीज़ का ज़रिया बन जाए। तीसरी चीज़ देखिए, इबादत में शिर्क, ये क्या है? माथा टेकना, सजदे करना, रुकू में घुसना, अल्लाह के माँ सिवाय इबादत किसी और की करना, और चौथी किस्म शिरकी, इस्तियानत के इस्तेहकाक में शरीक ना करूँगा। इस्तियानत के मदद मांगना, नाऊज़ु बिल्लाह। ज़रा वो कवालियों के और नातों के अशआर याद कीजिए कि बिगड़ी बनाने वाले और क्या कुछ करने वाले। तो देखिए आज इस क्राइटेरियन पे पूछिए, क्या बैत की इस पहली सबसे अहम कड़ी पे आज के बोन मुस्लिम भी पूरे उतरते हैं? बोन तो हर एक ही होता है, बोन मुस्लिम तो हर एक ही होता है, लेकिन हम खुद को कहते हैं ना कि हम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं। फिर दूसरी शिक देखिएगा, चोरी ना करूँगा, जिना ना करूँगा, खूने नाहक ना करूँगा, लड़कियों को हलाक ना करूँगा, किसी पर बोहतान ना लगाऊँगा। सोचिए ज़रा, चोरी, जिना, कत्ले नाहक, लड़कियों की हलाकत और बोहतान ना लगाना। पहली सारी छोड़ दीजिए, बोहतान लगते हैं आज, स्कैंडल्स बनते हैं, इल्ज़ाम हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को उछालता है, तो फिर इसको भी एक दफ़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तीसरी शिक्या थी, मारूफ के दायरे में हसब इस्तेतात अल्लाह के रसूल की इतात करूँगा। मारूफ का दायरा क्या होता है? अम्र बिल मारूफ, उर्फ से जानी पहचानी चीज़ें, जिसको अकल भी मानती है, जिसको शरीयत भी मानती है। आप अगर ये बैत के लफ्ज़ नोट करना चाहें एग्जैक्टली क्या होते थे, तो सूरत मुमतहना की आखिरी आयतें औरतों से भी लेते थे और ये जो पॉइंट्स हैं जो मर्दों से लिए जाते थे। अब आके क्या होता है, मक्का फतह हो गया, मिशन पूरा हुआ, जिस काम के लिए घर से निकले थे वो काम पूरा हुआ। बस बज़ाहर ये खुशी की बात होती है, लेकिन इसमें रवानगी का पैगाम होता है। 15 रोज़ या कमो बेश क़्याम रखने के बाद जब मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, ये नोट कीजिए और दुआ किया करें कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरज सिदकिन वज्जअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह कहीं दाखिल भी हूँ ना तो मकसद के साथ दाखिल हूँ, और निकलूँ तो मकसद के साथ निकलूँ। मतलब यह कि किसी ख़ास काम के लिए जाऊँ और वो पूरा करके फिर आऊँ। आज अमूमन वर्ल्ड टूर, सैर व सियाहत, और अगर उसमें भी गौर व फिक्र तदब्बुर रूह की ग़िज़ा है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अमूमन लोग सिर्फ सफ़र बराए सफ़र करते हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, और फिर उसमें एक लामुहल्ला सी बात है कि नमाज़ें तो नहीं पढ़ेंगे ना क्योंकि वेकेशन पे हैं, फ़न के लिए आए हैं, और दिस एंड दैट। नहीं, अल्लाह के नबी का हर सफ़र मकसद के साथ था, और जब काम पूरा हो जाता था तो फिर आप वहाँ से निकल आते थे। क्यों भला? इसलिए कि अगली जगह तैयार होती थी आपके लिए। ये ज़िंदगी मांगे अल्लाह से कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए, इसको समझिए, हम बाज़ दफ़ा अपने एक किस्म के हालात में रहते हैं ना, तो हम बहुत ऐसे डल हो जाते हैं, वही रूटीन, वही सुबह, वही शाम है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में हरकत रखते हैं, मूवमेंट्स हैं, आप इसको अब ये नहीं कहें कि आप, मिसाल है, आप ओस्लो में हैं, मैं अमेरिका में हूँ, फलां फलां, बस फिर अब फिर हम जगह छोड़ें, अच्छा फिर इस मुल्क को छोड़ें, नहीं, प्रोजेक्ट नए शुरू करें, नए प्लान। थोड़ी अरसा एक चीज़ चल पड़ी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, अब आगे अपने जोश दें, कोई सुबह की बात, कोई शाम की, कुछ रात की, कोई दिन की, यानी ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए गोल रखें, गोल सेटिंग। तो अल्लाह के नबी की ये सुन्नत थी कि जब काम पूरा हो जाता था तो रवाना हो जाते थे। तो फिर क्या किया, आप जाते हुए क्या करना, ये भी देखिए। तो असल तामीरी काम के लिए हज़रत माज़ बिन जबल को मामूर किया कि वो लोगों को इस्लामी निज़ाम हयात, इस्लामी अकायद, इस्लामी अखलाक, इस्लामी कानून और इस्लामी सकाफत की तालीम दें। इस्लामी अदलिया का निज़ाम आपके अपने हाथों हद जारी करने के इस मशहूर वाक़े से हुआ, जिसमें फ़ातिमा बिनते अबी अलअसद को चोरी के जुर्म में बड़े सिफारशी दबाव को मुस्तरद करके क़तअ यद, यानी हाथ काटने की सज़ा दी गई। हुनैन व ताइफ से फारिग होने के बाद मक्का आकर नबी सल्लम ने उताब बिन उसैद को नायब हाकिम मुकर्रर किया और 1 दिरहम यौमिया का मुआवजा इनके लिए तय कर दिया। इसमें भी देखिए अमल की बातें, खुद रवाना हो रहे हैं लेकिन किसी को मामूर करके जा रहे हैं, अमीर बना के जा रहे हैं, लीडरशिप या उसकी अथॉरिटी सब कुछ वाजह करके जा रहे हैं, ये भी एक असूल होना चाहिए। फिर दूसरी बात देखिए, उस्ताद मुकर्रर कर रहे हैं पीछे, जो इस्लाम की बातें, अकायद, अखलाक, ये सारी चीज़ें दिखाएं। देखिए, हर एक को इल्म की ज़रूरत होती है, इल्म के बग़ैर ज़िंदगी फीकी रूखी। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि वहाँ इस्लाम नाफिज हो गया, कोई चोरी करके जाए तो किधर जाए। और उसके बाद आप देखिए कि हुनैन और ताइफ का सफ़र हुआ, अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया किसी को और वहाँ से निकल आए। आपको नबी सल्लम की ज़िंदगी में एक जोश और एक जुनून नज़र आता है, बस अल्लाह हमें यह अता करते हैं। अब चंद चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि इस फ़तेह मक्का किस बात के इशारे कर रही थी। चंद अहम इशारात। फ़तेह मक्का तहरीक इस्लामी की तारीख़ का अजीम तरीन वाक़ है। अब गोया निज़ाम हक के रास्ते से सबसे बड़ी मुज़ाहिम ताकत हट गई थी। अरब की देरीना यानी पुरानी जाहली क़्यादत का ये मरकज़ था और इस क़्यादत का हदम जब तक ना हो जाता और लोगों की ज़हनी वाबस्तगी का ये कदीमी महवर जब तक जगह से टल ना जाता, मुमकिन ही ना था कि इस्लामी इनकलाब की रौ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सकती। जब जाहली क़्यादत का आलम सर नगू हो गया तो फिर निज़ाम जाहली का बरकरार रहना और जाहलीत के गिरद अवाम का सिमटे रहना मुमकिन ना रहा। बड़ी अहम बात है, आप देखिए कि वक्त के साथ सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। याद रखिए, आप हक पे रहें, हक के साथ रहें, हक के लिए जिद्दोजहद करें, एक वक्त आएगा आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो जाएगी। जो एक वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि ये अपनी जगह से नहीं हटेगी, ये नहीं हिल सकती। और दूसरी बात ये भी इससे समझ आती है कि जाहली निज़ाम जो होता है ना, ये अपनी मौत आप मर जाता है जब हक आ जाता है। आज आप जितना मर्जी रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ बात करें, लोगों की बेकारियत पे बात करें, नहीं समझ आएगी। आप उनको इल्म दे दें, किताब से जोड़ दें, खुद ब खुद अल्लाह उनके दिलों को खोल देगा। फिर आप देखिए, अवामुन नास की बहुत सी पेचीदगियाँ फ़तेह मक्का ने ख़त्म कर दी, ये भी नोट करें। आम लोग समटाइम सम थिंग्स में कन्फ्यूज होते हैं, वक्त के साथ ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, शर्त क्या है कि इल्म का सिलसिला जारी रहे। बहुत से कबाइल इस्लाम की तरफ बढ़ने से इसलिए माजूर थे कि कुरैश के साथ या तो इनके हलीफाना ताल्लुकात थे या माशी तौर पर वो इनके दस्ते नगर और मकरूज़ थे, या इनकी समाजी बरतरी से मरऊब और मजहबी लिहाज से इनकी प्रोहती से मशहूर थे। प्रोहती क्या होता है? प्रोहत होना, जैसे हमारे मजहबी रहनुमा को आप किसी कहते हैं ना कि ये मौलवी हैं या मज़हब का काम करते हैं, तो प्रोहती भी कुछ इसी किस्म का नाम होता है उस माशरे के नाते से। कुरैश की अजमत का बुत जब टूट गया तो इनके रास्ते साफ हो गए। ये भी नोट करें, सेल्फ प्रोजेक्शन, बड़ा बनना, हम बड़े हैं। जब उनको ये मान था ना, और इसी मान ने उनको बहुत साल नबी सल्लम की दावत पे कान भी ना धरने दिए, खुद को जो बड़ा समझे थे तो किसी और को कैसे समझे। ये तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, आप भी बड़े तो मैं भी बड़ी नहीं। जब ये बुत टूट जाता है ना, तो अल्लाह के हुक्म से जहन साजी भी हो जाती है। बहुत से अवामी हलकों में ये इतिकाद फैला हुआ था कि मक्का में सिर्फ वही गालिब रह सकता है जिसे अल्लाह की ताईद हासिल हो, और जो ताकत हक पर ना हो इसे मक्का में फ़रोग हासिल नहीं हो सकता। इस तरह का इतिकाद अब्रहा के हमले के बाद से भी बहुत कवी हो गया, और लोग ये समझते थे कि कुरैश मकबूले इलाही हैं। चुनांचे लोग कहा करते थे कि इसे अपनी कौम से निमट लेने दो, इत्रकूहू व कौमहू फ़इन्नहु ज़हर अलैहिम फ़हुवा ली सादिक। यानी जब कोई गालिब आता तो ये इसको उसके सच्चे होने की दलील समझते। इसे अपनी कौम से निमट लेने दो, अगर इसने कौम को जेर कर लिया तो वो नबी सादिक है। इस एतक़ाद के मुताबिक ही अब राय आम का मर्जे इस्लामी तहरीक बन गई। न सिर्फ मक्का के लोगों ने बल्कि आसपास के कबाइल के वफूद ने आकर खुशी खुशी अपने आप को इस्लामी तहरीक का खादिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का पैरो बना लिया। इससे क्या पता चलता है कि जब मरकज़ मज़बूत हो जाता है ना, तो साइड की चीज़ें भी सही होने लगती हैं। मक्का को आप समझिए कि मेन ब्रांच, मेन इंस्टीट्यूट, तो साइड के सारे कबीले और बस्तियाँ वो आपकी ब्रांचेस बन गई। आप काम अच्छा कीजिए, लोग आपके पास आकर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी कुछ मौका दें, और आप ढीले काम कीजिए तो बाज़ दफ़ा जो काम कर रहे होते हैं वो भी वो काम को छोड़ देते हैं या उसका हक नहीं अदा करते। अब ख़त्म हो गया ना अल्लाह के नबी का काम? नहीं, मोमिन मरते दम तक ऑन ड्यूटी होता है। मक्का जो फतह हो गया तो बस अब जाके सो जाए, ख़त्म? नहीं, एक तरफ कह लीजिए कि एक महाज पूरा हुआ, तो अब क्या हुआ? अब दावती और तालीमी काम के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो गया। इसको हाईलाइट करें। और एक एक मुसलमान के लिए हर तरफ मौका निकल आया कि वो तहरीके हक का पैगाम अवाम तक पहुंचाए। अब कोई रुकावट डालने वाला नहीं था। रुकिए ज़रा सोचिए, इस जुमले को आज के मुसलमान और ख़ास तौर पर हम अपने ऊपर फिट करें। क्या हमारे लिए दावत और तालीम का मैदान साफ़ है? क्या हमारे लिए अब मौका है कि हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं? कोई रुकावट है हमारे हाथ में, आगे हमारे सामने? वल्लाही, वो तो फतेह मक्का के बाद जहनी तौर पे आज़ाद हुए, हम तो पैदाइशी आज़ाद हैं। अल्लाह ने हमें वो धक्के नहीं दिए जिन धक्कों से गुजर कर नबी के साथ के लोग तैयार हुए थे। तो फिर आपके मेरे लिए भी दावत और तालीम का मैदान खुला हुआ है। जो कर सकते हैं कर लें, जहाँ तक अपनी खैर पहुँचा सकते हैं पहुँचा लें। आपके शहर की गली गली क़यामत के दिन इस बात की गवाही दे कि आपने इस स्कूल का हक अदा कर दिया। खुद सोचें, प्लान बनाएं, इरादे को बनाएं, और आप जितना ज़्यादा खुद गर्म होंगे ना, लोगों को तो बड़ी ज़रूरत है। मैं ये तो अभी भी नहीं मानती कि आपके शहर में इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका शहर क्या पूरी दुनिया को ज़रूरत है? इवन इस वक्त अगर मैं जहाँ हूँ, और मेरा अपना ज़ाती गुमान है कि इस तरफ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं काम की, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इस तरफ इन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गुमान है कि इस्लाम का काम जितनी फुर्ती और तेज़ी से इन मुल्कों में हो रहा है, शायद कहीं और ऐसा होता ना हो। इसके बावजूद देखिए, तलब और तड़प बेशुमार। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, एक हफ्ता हुआ है देखिए आज भी, और कोई दिन नहीं, और साथी पिटारे खोल के बैठे होते हैं किसको नो कहें किसको नहीं। और जो सबसे स्ट्रेंज बात मुझे यहाँ आके लगती है ना, ये बाहर वालों को नहीं मेरी बात समझ आएगी, लेकिन हौसलों वालों को समझ आएगी। दुख के साथ कहूँगी, मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर की मस्जिदों के दरवाज़े खुले हुए हैं और बड़े बड़े घर, यानी लोकल लोग अपने घरों को और मस्जिदों वाले मस्जिदों में दर्स रखने जाते हैं, हॉल्स, बड़े बड़े प्रोग्राम, किस सोच के साथ कि हम इस मौके से फ़ायदा उठा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और क्या चाहिए, वो कहते हैं ना अंधा क्या चाहे दुआ के, जब आप इतनी मेहनत करके अल्लाह का पैगाम सुनवाने को तैयार हैं तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों, मैं कोई बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ही मैं कोई कह लीजिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उलझी हूँ, जब अल्लाह ने मुझे हॉल दिया, जब अल्लाह ने मुझे नेमतें दी तो मैं तहदीस से नेमत के साथ क्यों ना करूँ कि फ़ाम बी नेमत ही रबी का फहदिस। तो वहाँ के हिसाब से मैं इस चीज़ का दर्द महसूस करती हूँ कि दिल नहीं खुले हुए लोगों के, नो नो ही है, वजह क्या है, हमारा ये नाम, हमारी ये जमात। तो याद रखिएगा इस जुमले को दोबारा पढ़ती हूँ और आप इसकी लज्जत को महसूस कीजिए कि फतह मक्का के बाद अब दावत और तालीम के लिए मैदान खुल गया, हर मुसलमान के लिए मौका बन गया कि हक के इस पैगाम को अपने इर्द गिर्द फैला दे। अब कोई रुकावट नहीं, हमारे इर्द गिर्द भी कोई रुकावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर अपनी ज़ात के साथ अहद कर लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, आपको कहता, आप देखिए वहाँ तो एक अबू जुंदल थे बेड़ियों में जकड़े हुए, अल्लाह के नबी ने अहद को पूरा करने के लिए उनको वहीं छोड़ दिया, उस एक शख्स ने 300-400 लोग जमा कर लिए, आपको बताइए, पीछे पढ़ के भी आया और वाक्य की तफसील रही को मखतूम में पढ़ी हुई है जिन लोगों ने वो पढ़ी थी बुक। कैसे एक हीरा होता है मोमिन, एक बंदा, सिर्फ एक, ओनली वन पर्सन कैन ब्रिंग द चेंज। और जिधर भी मैं नज़र डालूं किसी भी काम में, वहाँ शुरू में कोई एक ही था, उसने तड़प रखी, फिर दूसरों को तड़पाया, फिर कोशिशों के रुख, और फिर उसके बाद अल्लाह ने कबूल कर लिया। हर शहर में यही होता है, हर मुल्क में यही होता है। आप अपने आप को कहिए मैंने अपने इर्द गिर्द के लिए वो तड़पने वाला इंसान बनना है कि जो मेरे ख़ानदान, मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरे शहर और मेरे मुल्क में तब्दीली लाएगा। नाम लेने की तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको अपना नाम ढूंढिए। क्या मुझे अपने इर्द गिर्द की फ़िक्र है? क्या मैं अपनी इर्द गिर्द की गंदगी को देख के सिर्फ कुड़ती हूँ? और ये भी अल्लाह की रहमत है कि कुड़ने लग जाएं, हम तो अब कुड़ते भी नहीं, हम कहते हैं इट्स ओके, पहले एक्सपेक्टेड था फिर एक्सेप्टेड हो गया। तो याद रखिए फतेह मक्का सुस्त नहीं करती, कामयाबियाँ आपको नशा नहीं दिलाती, कामयाबियों के बाद जश्न नहीं होते, कामयाबियों के बाद मजीद काम होता है। और वो जुमला तो अभी भी दिल दिमाग पे लिखा हुआ है जो ऊपर पढ़ के आए हैं कि सर ज़मीन मक्का को हासिल करने से बड़ी खुशी ये थी कि लोग जौक दर जौक आकर नबी के हाथ पे इस्लाम कबूल कर रहे थे। ये मांगिए अल्लाह से, अल्लाह जगह भी दे तो लोग भी दे, काम भी दे और काम का शौक भी दे, फिर इस काम पे हमें जमाए रख। ये ना कि काम तो बहुत, तो हमारा हिस्सा निकल जाए, हम महरूम हो जाएं, और बड़े खुश हैं क्योंकि शुरू जो किया था, बहुत खुश हैं कई साल कर लिया, और बहुत खुश हैं इसलिए कि अब दूसरों को भी मौका दें। आप इतने फैयाज ना बने, अपना मौका छोड़कर दूसरे को मौका देना नेकियों के काम में पसंदीदा नहीं है। आप कहते कि साहबे रसूल अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, नमाज में राइट साइड पे खड़े हैं क्योंकि सीधे हाथ की तरफ सफ़ा जर है, कोई कहे अच्छा जी आप मुझे जगह दे दीजिए, आप उधर आ जाएं, का ये मैं नहीं करूँगा, आना है तो कल जल्दी आना। मैं जल्दी आया, मैं आके राइट साइड पे बैठ गया। सहाबी है अल्लाह के नबी, शुरू किधर से करें, राइट से करें या बड़े से करें? राइट पे बच्चा है, लेफ्ट पे बूढ़ा, कहा कि आप जो कहें, कहा नहीं मैं अपना ये हक नहीं दूंगा, पहले मैं नबी का छोड़ा हुआ पीऊँगा फिर दूसरे को दूंगा। तो सहाबा में ये हिर्स थी, अल्लाह ये हिर्स मेरे और आप में लगा दे। ये सीरत ही असल में मुझे लगता है कि रोज़ दोबारा काम के लिए तैयार करती है। मुझे लगता है अगर हर रोज़ सुबह उठकर हम अपने घरों में सीरत का एक सबक पढ़ लें, नबी की ज़ात का कोई एक नुक्ता समझ लें, चेंज आएगा, फिर हमें किसी की बातों की परवाह नहीं रहेगी। तो लिहाजा पहली बात क्या पूरी हुई कि फतह मक्का के बाद अल्लाह के नबी मक्का छोड़ गए, काम पूरा हुआ, अब जाना है क्योंकि दूसरी जगह काम तैयार है। मोमिन सूरज की तरह होता है, एक जगह से काम लोगों ने लिया उसे, जू ही लोग सुस्त होने लगे, वो कहते हैं अब मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ आराम करो, और वहाँ से निकलता है और वहाँ चला जाता है कि जहाँ भी लोग आराम करके उठ रहे हैं। फिर जब वो लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, अब वो थकने लगे, सोने लगे, या अब उनको ज़रूरत नहीं रही, तो तीसरी जगह दुआ कीजिए अल्लाह आपको मुझे सूरज चाँद की तरह फ़ाल बना दे, एक्टिव बन जाएं, जहाँ खड़े हों वहाँ रोशनियाँ बांटें, और लोग सोना चाहें आप अपनी राह ले लीजिए, ज़ाया मत कीजिए अपनी ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके पर्स में रखे हुए डॉलर्स और आपके बैंक में रखे हुए जेवरात से कई गुना कीमती ये ज़िंदगी है, जिसको हमने आज इतना सस्ता कर दिया, ज़ाया हो रही है, हर दिन ज़ाया हो रहा है, और कल की आस में फिर एक और दिन ज़ाया कर देते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी आपकी इसलाह फरमा दे। 3 सेकंड खामोश होती हूँ, कोई नीयत कोई इरादा करें अपने लिए।